ओम शांति। अब दादा की पर्सनल मुलाकात तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या करेगा? तमिलनाडु सदा सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता है। कोई दुख भी दे तो उसको सुख में परिवर्तन कर लेंगे। तो 6 मास की रिजल्ट देखेंगे। ऐसे ताली नहीं बजाना, रिजल्ट के समय की ताली बजे ऐसा करना। तो तमिलनाडु भी रेस अच्छी कर रहे हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति को भी तमिलनाडु अच्छा लगता है, वहां प्रकृति भी वार करती है। तमिलनाडु वाले क्या बनेंगे? मास्टर सुखदाता। अब देखेंगे महाराष्ट्र आगे जाता है या तमिलनाडु आगे जाता है। लक्ष्य तो सभी का यही है कि सबसे आगे जाना है, और जा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं तमिलनाडु सदा सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता है। कोई दुख भी दे तो उसको सुख में परिवर्तन कर लेंगे। कैसे? क्या करेंगे? कोई दुख दे तो उसे सुख में परिवर्तन कैसे करेंगे? क्या करेंगे? थियरी कि प्रैक्टिकल? तो
हमारे जन्म में हम दुख करता सुख करता के बच्चे।
कोई दूसरा हमको दुख दे रहा है, हम तो सबको सुख ही देते हैं, दूसरा दुख दे रहा है। क्षमा कर देंगे, शुभ भावना या क्षमा कर देंगे। अपकारी पर उपकार, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, क्षमा कर देना। हाँ, उसमें अपने समान में रहे कि हम कौन है, दुख क्या है, दुख है क्या, दुख तोहफा। तोहफा वो अलग बात है, वो हम समझे दुख का क्या वजन है, क्या रंग है, क्या रूप है, फीलिंग है, एक भावना है, एक अनुभूति प्रतीति है कि जिसमें आत्मा विषाद की अनुभूति करती है, डिप्रेशन की अनुभूति करती है। एक भाव है दुख, न चलने का परिणाम। पर दुख की जननी कौन है? किस कोख से दुख जन्म लेता है? स्वभाव, पाप कर्म, वीकनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट कमजोर संकल्प। दुख का अज्ञान दुख का कारण है। दुख की जो जननी है वो है अज्ञान। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अज्ञान दुख को जन्म देता है, क्योंकि अगर ज्ञान है तो दुख हो ही नहीं सकता। किसी भी सब प्रकार का अज्ञान दुख को जन्म देता है। अगर दुख है, इसका कारण है कहीं ना कहीं अज्ञान है, चाहे श्रीमत के बारे में, चाहे पवित्रता के बारे में, या जीवन के बारे में, जीवन के राज रहस्यों के बारे में। तो दुख का प्रमुख जो कारण है वो है अज्ञान। तो दुख से अगर मुक्त होना है तो अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। एक तो ये, और दुखों के क्या कारण है ब्राह्मण जीवन में? इच्छा है, सबसे मुख्य कारण है इच्छाओं की अपूर्ति। इच्छाएं पूर्ण ना होना, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस पूर्ण ना होना, और असंतुष्टता, अलबेलापन, आलस, अलबेलापन अंततो गत्वा दुख को जन्म देता है। और वो तो सब दिल शिकस्ता या जो भी है, वो सब दुख के ही स्वरूप है। उदासी, अपेक्षा भंग, वो सब दुख के स्वरूप है। कारण एक तो इच्छाएं, अपेक्षाएं, बार बार बहुत ज्यादा फीलिंग, स्वभाव ही है दुखी, सेंसिटिव नेचर। बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव है उसको उतनी ज्यादा दुख की अनुभूति होगी, जो थोड़े कम सेंसिटिव है उन्हें कम दुख की अनुभूति होगी। बेबी क्वालिटी, बचपन के संस्कार, क्या क्यों भावनाओं में, अध्यात्म मार्ग भावनाओं से ऊपर उठाता है, उस तरह की जो भावना है जिससे दुखी होने का संस्कार हमें, हम संस्कारित हुए हैं बचपन से ही दुखी होने के लिए, अब असंस्कारित होना पड़ेगा। हमें सिखाया गया है, समाज ने वो संस्कारीकरण किया है, अभी विपरीत गति करनी पड़ेगी। मार्ग वही है परंतु दिशा बदलनी पड़ेगी, आने का जाने का, दुख की तरफ आने का और सुख की तरफ जाने का। रास्ता तो वही है परंतु दिशा विपरीत है। जो जो कुछ किया दुखी होने के लिए, अब वो सब कुछ करो उसके विपरीत, सुखी होने के लिए। एक रुमाल है और उसे गांठ बांध दी गई, 3 4 5। उस रुमाल में जिसे गांठ नहीं है और वह रुमाल जिसमें गांठ बंधी हुई है, उसमें क्या भेद है? वस्तुतः दोनों ही रुमाल है, पर उन यहाँ पर गांठ है, वहां गांठ नहीं है। गांठ या ग्रंथि, कॉम्प्लेक्सेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो जो गांठे है, जो ग्रंथियां है, एक एक करके खोलनी पड़ेगी उसे। तो दुख से मुक्त होने के लिए दुख का कारण क्या है उस तक पहुंचना पड़ेगा, और उस कारण को पहुंचकर उस कारण से वहां से मुक्त होना पड़ेगा, तो ही दुख से मुक्ति हो सकती। जैसी गांठ बांधी है अभी उसी रीति से उसको खोलना पड़ेगा, उसके साथ लड़के झगड़ के वो खोली नहीं जा सकती। कैसी वो बंधी, कौन से वो कारण थे जिस से वो दुख इस हद तक बढ़ गया कि हम अब उदास हो गए हैं, कहां से उसकी शुरुआत है, आगाज कहां से हुआ है उस दुख का, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो दुख से मुक्त होने के लिए दुख के कारणों को जानना बहुत जरूरी है, और हरेक के व्यक्तिगत कारण क्या क्या है दुख के, हरेक के अलग अलग हो सकते हैं। किसी का सेंसिटिव स्वभाव, किसी की बहुत अपेक्षाएं, बहुत आशाएं, इच्छाएं, नाम मान की प्रबल इच्छा व्यक्ति को दौड़ाता है और दुखी करता है, सेंसिटिव इमोशंस। और क्या कारण हो सकते हैं दुख के? वो सारे ही कारण जो हमें दिन भर दुखी करते हैं कहीं ना कहीं, क्या है? और किसी आत्मा के साथ कड़ा हिसाब किताब है और वो भी दुख का कारण बन सकता है। और दुखी होने का संस्कार ये, दूसरों के संस्कार, दूसरों के संस्कार, वो भी एक, मैं मेरा दुखी। हाँ, अपने ही मूल संस्कारों से अज्ञानता, हम अनभिज्ञ, हमें पता ही नहीं हमारा मुख्य स्वरूप सुख स्वरूप है, उसके समीप हम कितने रह रहे हैं, इस संस्कार के समीप। इस संस्कार से हमारी दूरी है, हमने नए संस्कार थोपे उसके ऊपर, जो समाज, बचपन, व्यक्ति, इन्होंने हमारे ऊपर जो डाले हैं, हमने अपने आप को सिखाया है। कभी कोई दुखी होने की कहीं शिक्षा नहीं दी जाती है, परंतु फिर भी सभी दुखी है। सुखी होने की शिक्षा है सब जगह है, परंतु फिर भी मानव व्यक्ति दुखी है। किसने उसे दुखी किया है? रावण, माया, ये शब्द छोड़ दो, मैं, अहंकार उसे दुखी करता है, लगाव उसे दुखी करता है। लगाव और मोह, कहा ना उस दिन, फांसी का तख्ता है ये। जब तख्त से नीचे आते हो तो इस तख्ते में फंसते हो, तो व्यक्तियों से तो सारे विकार आ गए उसमें, तो व्यक्तियों से, वस्तुओं से लगाव वो दुख का कारण बनता है। एक, वस्तुओं से लगाव, मोह, वो भी दुख ही तुम्हें दुखी बनाता है। हाँ, अपेक्षा है, आशा है, वो सारी एक्सपेक्टेशंस में आ गया। और दुखी कौन करता है व्यक्ति को? दुखी होने का स्वभाव संस्कार, सेंसिटिव नेचर, सोच, संकल्प, विचार, भावनाएं, अपेक्षा, ये सारी चीजें व्यक्ति को दुखी करती है। हमारे दुख का कारण क्या है? हम खुद है। असफलता जब होती है तब भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। बीमारियां एक मुख्य कारण है दुखी होने का। जब बीमारी आ जाती है तो ठंडा हो जाता है व्यक्ति, सारा उमंग उत्साह कहीं खो जाता है। तो हाँ, वो भी है, पर ये जो बीमारी जो चीज है ये एक मुख्य कारण है व्यक्ति का। वो बीमारी क्यों आई है वो बीमारी को समझ नहीं पाता है। और ऐसे जब महावाक्य आते कि मेरे पास मत आओ, फिर जाए कहाँ? कृपा दया आशीर्वाद मैं नहीं करूंगा, किसी और डिपार्टमेंट में जाओ, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। और बाबा ऐसे कहते, कारण क्या है? अगर शारीरिक बीमारी आ जाए उसके लिए भी बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है, कैसे अपने आप को वहां पर भी सुख स्वरूप में स्थित रखना है। मुख्य तो एक ही है जो कुमुद बहन ने कहा, देह भान। जहां जहां देह देह का भान देहाध्यास है वहां दुख है, जहां जहां हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है वहां वहां सुख है। जितना हम स्वमान में है देह देह की देह का भान, देह की प्रतीति, देह की आसक्ति, देह का अभिमान, देह का अहंकार, देह से संबंधित जो भी बातें हैं वो दुख का बाइस है। इसके लिए इस देह के ऊपर जाना पड़ेगा, निरंतर उस स्थिति में रहना जहां देह का भान कम से कम है। एकदम मुक्त हो जाना बहुत मुश्किल काम है।
कोमा में चला जाता है, उसमें भी दुख फील होता है।
वो तो अगर जो बाहर निकलता है वो ही बता सकता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस है ओ, आउट ऑफ OOB, और दूसरा होता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये दो चीजें हैं विज्ञान में। कई लोगों ने ये अनुभव किया है।
भाई आए थे, गाड़ी चला के जा रहे थे, सभी मर गए वही बच गए। फिर जब सुना घर वाले सब छोड़ी छोड़ दिया, कोमा में चले।
तो वही है, परंतु अभी तक 95% लोग जो इस स्थिति में गए हैं, कोमा में गए हैं और फिर उससे बाहर निकले हैं, उन्होंने सबने बताया कि सबने सुख का अनुभव किया है। इस पर बहुत बड़ी किताबें लिखी गई है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ। तो उन्होंने सबने बताया क्योंकि वो देह से रहित स्थिति में उन्होंने अतिशय सुख का, पहले एक जैसे टनल से जा रहे है और फिर देखा कि अशरीरी अवस्था है, लाइट स्वरूप अवस्था है। कईयों ने तो ऐसा देखा कि जैसे वो एकदम सीरियस हो गए और फिर ऊपर से अपने आप को ही देख रहे। पहले लोगों ने कहा ये जो सुना रहे हैं लोग ये तो जस्ट अपने मन की भ्रांतियां सुना रहे, पर उन व्यक्तियों ने वो सब बताया जो कि मेडिकल फील्ड के नहीं थे, और उन्होंने वो सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या किया गया। तब लोगों को मानना पड़ा कि नहीं, ऐसी भी कोई चीज है कि व्यक्ति अपने ही शरीर से डिटैच हो जाता है और बहुत सुख का अनुभव करता है। नियर डेथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मैं उन कोमा की बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति कोमा में गया और फिर वापस आ गया। हाँ, वो एक दूसरी बात है। आत्मा तो वहां पर भी दुख की अनुभूति तो करती है, परंतु उनकी बातें चल रही है कि जो गए और वापस आ गए। हाँ, वापस आ गए, वो जो आउट ऑफ बॉडी और नियर डेथ वाले जो है वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने अपने अनुभव सुनाए कि बहुत, और उन्होंने सब कुछ सुना है। तो कहने का भावार्थ ये है कि जैसे ही हम देह से अलग होते हैं, आत्मा अपने सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होती है। जैसे ही देह भान में रहती है उसे दुख की अनुभूति होती है, और देह भान ही तो अज्ञान है। तो दुख का जन्म अज्ञान से होता है, और देह भान सबसे बड़ा अज्ञान है। तुम वो हो ही नहीं जो तुम अपने आप को समझ रहे हो। तो निरंतर अपने आप को उस स्थिति में, ज्ञान के मनन में, ज्ञान के चिंतन में स्थित रखना, अर्थात देह भान से परे रहना। चलो एकदम अशरीरी अवस्था नहीं है परमधाम वाली, परंतु देह के भान से तो ऊपर है। ज्ञान मनन, स्वमान का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं कि जो हमें देह भान से थोड़ा ऊपर या विचारों का जो आनंद है, जैसे कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, भगवान को माने या ना माने इससे कोई उसका संबंध नहीं, परंतु ये जो लोग होते हैं विचारक, थोड़े से देह भान से ऊपर रहते हैं, इसके लिए उनकी उनको उतना दुख नहीं होता जितना संसार का कोई व्यक्ति होता है कितना दुखी होता है। उसको तो चिंताएं सताती रहती है, आगे क्या होगा, कल क्या हो गया, अभी इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, इस तरह की चिंताएं। वो लोग जो परमात्मा को तो नहीं मानते, नास्तिक है पक्के, परंतु फिर भी विचारों के आनंद में रहते हैं, उनकी स्थिति थोड़ी ऊपर रहती है। क्यों? कारण वही है, क्योंकि देह के भान से ऊपर रहते हैं। तो मुख्य एक ही कारण है, देह। और देह से आत्मा इतनी संयुक्त है, इतनी जुड़ी हुई है, क्योंकि सब कुछ उसको देह के साथ करना है। इसके लिए हमारा निरंतर अभ्यास एक ही हो, इस देह से ऊपर जितना समय हो सके। जैसे ही देह का भान आएगा, समझ लेना कोई ना कोई दुख सामने आने वाला है। और जितना गहरा देह भान होगा, उतना दुख भी गहरा होगा। एक है केवल देह देखना, वो थोड़ा सा हल्का है, फिर उसके नीचे और निगेटिव, उसके नीचे और विकार, उनमें से भी काम, काम विकार देह भान की सर्वोच्च अवस्था है। जितना देह भान काम विकार के लिए चाहिए, उतना बाकी विकारों के लिए नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए उसके लिए। इसके लिए दुख भी उतना ही प्रगाढ़ होगा, उतना ही गहरा दुख होगा उससे। तो ये सारी जो देह भान की स्टेजेस है, देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, विकार, विकारों के संकल्प, एक विकारों की भावनाएं, विकार की दृष्टि, विकार में प्रवृत्त होना, उसके अंदर वो एक्ट, एक संकल्प, एक क्रिया, इसके बीच दुख बढ़ता जाता है। और क्षणिक सुखों की अनुभूति ऊपर से होती है, परंतु वो सुख अपने साथ बेचैनी लाता है, वो क्षणिक ही है। कल कहा ना, शोक ही शोक है संसार में, शोक वाटिका है। अशोक वाटिका सच्ची केवल एक सतयुग है, ये तो रावण का चीची पराया घाट है, होटल घाट है, रावण का घाट। तो ये संसार में जो क्षणभंगुर जो भी है, वो सब दुख का कारण है। जो भी क्षणभंगुर सुख है, वो दुख का सबब बनेगा। इसके लिए निरंतर अपनी अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित रहना, वो एकमात्र मार्ग है जो बाबा ने आके बताया। आज तक लोगों ने कई किताबें लिखी है, सुखी कैसे हो, हैप्पीनेस के ऊपर हजारों किताबें, पर जो लिख रहा है क्या वो खुद भी सुखी है? पूछो उसको जाकर, मुश्किल है। यहाँ तो हमको केवल स्वयं सुखी नहीं, दूसरों को भी सुखी करना है। स्वयं दुख से मुक्त नहीं, दूसरों को भी दुखों से मुक्त करना है। दूसरों के भी दुख भंजन बनना है, भंजक। तो कोई दुख भी दे, यहाँ अभी दूसरा प्रश्न है, पर कोई दुख दे तो उसको सुख में परिवर्तन कर लेंगे। अभी ये कैसा, मूल प्रश्न तो यहाँ है कि कोई हमें दुख दे रहा है, सता रहा है, अपमान कर रहा है, उसको सुख कैसे दे दे? उसको हम उसको सुख में, उसको देना नहीं देना छोड़ दो, हम कैसे परिवर्तन कर दे या उससे अप्रभावित रहे? एक तो ये सोचो कि हिसाब किताब चुप हो रहे हैं, और क्या सोचो? हाँ, पत्ते को जानना पड़ेगा। बाबा ने कहा ये जो झाड़ है, हरेक का स्वभाव क्या है, इसका भी हमें ज्ञान चाहिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बस सबको ही दुख देता है और हमको दे रहा है, तो हम उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है। हमने ये थोड़ा सा जाना है कि ठीक है, इस झाड़ के जो पत्ते हैं उनको जानना पड़ेगा, और वो आत्माएं जो हमारे अधिक संबंध संपर्क में, उनके स्वभाव को जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमको प्रभावित करता है सीधा। वो दूर बैठी आत्माएं दुखी जो है, दुखी दुख दे रहे दूसरों को, हमको नहीं दे रहे, वो हमको इतना प्रभावित नहीं करेगी। पर हमारे आसपास वाली जो आत्माएं हैं, जिस डिपार्टमेंट में हम हैं, वो जो आत्माएं हैं, उनके स्वभाव संस्कार को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे दुख का कारण बनते हैं ज्यादा से ज्यादा। हमारे दुख का कारण दूसरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं है,
कम
ज्यादा जो बनते हैं वो जो जितने हमारे निकट है, जितने समीप है, निकट है, सीनियर जूनियर वरिष्ठ और जो नीचे या सहयोगी, ये तीन ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हमारे दुख के कारण बनते हैं। हम उसे स्वीकार नहीं करते कि ये दुख है, परंतु आत्मा नीचे तो गिर जाती है ना वो सुख स्वरूप स्थिति से। एक है जैसे वो संडे की मुरली में गुण, अर्थात मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, देखू तो आनंद, सुनू तो आनंद, बोलू तो आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसी स्वरूप आनंद चिडो है, आनंद तरंग, आनंद ची अंग, आनंद अंग, ऐसी आनंद स्वरूप स्थिति थोड़ी रहती है वहां पे। फिर सब कुछ आनंद ही आनंद, ऐसा नहीं रहता है वहां। वो नीचे उतरते हैं पर स्वीकार नहीं करते ना, फिर भी हम वही कहते कि ये दुख का कारण है। वास्तव में हमारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं ही है। हमारा ही कोई एक संस्कार है कि जो हमारे दुख का कारण बन रहा है, केवल हम उसे जान नहीं रहे, हम दूसरों पर वो दोष थोप रहे हैं। इसके वजह से मैं दुखी हूँ, इसके वजह से दुखी हूँ, इसने ये मुझे कहा इसके लिए मैं दुखी हूँ, इसने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया इसके लिए मैं दुखी हूँ।
हमारे कारण कुछ दुखी हो रहा वो नहीं हम सोचते,
वो तो हम हमारे अहंकार को ठेस पहुँचती है वहाँ पर, अगर हम वो सोचे तो।
हिटलर जैसा व्यक्ति कितना सब मारा है,
परंतु हिटलर को वो करते समय दुख नहीं था,
नहीं उसके बाद में जो जन्म होगा।
हाँ वो दूसरी बात है, पूरा आगे का जन्म छोड़ो, पर वो कभी दुखी नहीं था, उसको गर्व था उस बात के बारे में। तो प्रश्न आगे फिर भी वही है, एक तो कारण बताया कि हमें कोई दुख दे तो हम उसे सुख में कैसे परिवर्तन कर दे, अपने सुख स्वरूप स्थिति में। उसके लिए समान के अभ्यास को बहुत ज्यादा बढ़ा देना पड़ेगा। बाबा ने ये भी कहा है, कभी हार होती है, असफलता मिलती है तो दुख होता है, परंतु ये भी कहा है बाबा ने, जरूरी नहीं है कि सदा ही सफलता होती रहेगी, जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें आएगी जब असफल होंगे। सब में सब गुण तो है ही नहीं। आप अगर कोई परीक्षा दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपका सारा ध्यान ज्ञान योग की तरफ, वो पढ़ाई कम की तो फेल होंगे।
असफलता के बाद भी असफलता मिलती है, अनुभव
थोड़ी मिठास होती है उसमें। हाँ फिर ये अगर इस तरह की जो परिस्थिति आती है कि किसी से दुख मिल रहा है, वहाँ ये सोचना कि ये पेपर है, इससे हम आगे बढ़ेंगे, इस दुख को पार करने के बाद हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे, कुछ तो हम अनुभवी बन गए होंगे, कुछ सीख रहे हैं, अनुभव बढ़ रहा है, क्लास आगे बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, और ये अनुभव आगे कई आत्माओं को काम देगा। हमारी वजह से हम किसी और को भी इससे मदद करा सकते हैं इस अनुभव के आधार से। तो हम अनुभवी बन रहे हैं, परीक्षा है, पेपर है, हिसाब किताब है, ये सोचना, दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार को जानना, कौन दुख दे रहा है। हाँ जितना आगे बढ़ रहे हो उतना, बाबा ने कहा ना सबसे ज्यादा सुखी तुम थे ना, तो दुखी भी तुम ही होंगे। सबसे ज्यादा सुख तुमने भोगा ना, तुमको भी सबसे ज्यादा दुख भी भोगना पड़ेगा, दुखों के पहाड़ गिरने हैं। ये तो तुम्हारे आपके दुख तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बोला है बाबा, आपके तुम्हारे दुख तो कुछ है ही नहीं, दुखों के पहाड़ गिरेंगे और फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू तो सबको जाना ही है, जीवन इतना सहज सब कुछ नहीं कराता है। सीखा है ज्ञान, पढ़ा है ज्ञान, सुना है ज्ञान, परंतु कुछ कुछ बातें ऐसी है कि हमको खुद उससे गुजरना होगा, तो ही हमको लगेगा ये मेरे लिए था। पढ़ रहे 10 साल से कोई दुख सुख दो, सुख दो, सुख दो, दुख नहीं लो, पर उससे जब गुजरेंगी आत्मा तो उसको डायरेक्ट अनुभव होगा। तो कोई दुख भी दे तो उसको सुख में परिवर्तन कर लो। फिर दूसरा, हमारा स्वभाव ही वो है ना, सुख स्वरूप हम है। जैसे समान का अभ्यास बोलो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा स्थित होने का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। अच्छा फिर जो दुख दे रहा है उसके लिए क्या करें? शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, पर वो कहाँ खो जाती है उस समय पता नहीं चलता ना, वो तो बाद में याद आती है जब दुख दे। हाँ डोंट माइंड, पर ऐसे आघात करते हैं सीने पे सीधा, क्या कहे? अच्छा जो मैंने दिया था मुझे मिल रहा है, थोड़ा देर के बाद याद आता है। चलो बाद में कर लो, एक घंटे के बाद कर लो या अमृत वेला कर लो फिर। एक दो दिन फिर वो बढ़ते जाएगा, समय थोड़ा कम ही रखा, रिकवरी पीरियड कम होनी चाहिए। आघात हो गया, किसी ने तीर चला दिया और वो चुप गया, वो वहां से निकल के उसको फेंकने का ये जो टाइम है ना, 15 मिनट, एक घंटा है, 24 घंटा, जल्दी हो जाए, जितना जल्दी, ये जो रिकवरी पीरियड है दुखों से निकलने का। कवच पहनना सर्वोच्च अवस्था है। वो ही तो खो जाता है वो कवच, पता नहीं, बाबा कहते ना, पता नहीं तुम बच्चे क्यों वो ड्रेस को निकाल देते हो और वो ड्रेस पहन लेते हो। रोज ये चीज चेक करना है, जो पांच ड्रेसेस बताई ना, कि कहीं मैंने मिट्टी वाली ड्रेस तो नहीं पहनी, कहीं मैंने मैली ड्रेस, मिट्टी वाली ड्रेस, चमड़ी वाली ड्रेस, देहभान वाली ड्रेस, ये पहली ड्रेस। दूसरी, मैंने बदबू वाली ड्रेस तो नहीं पहनी आज, बदबू देह की आसक्ति, देह की वस्तु व्यक्तियों से लगाओ। दूसरी, तीसरी, कहीं मैंने चमड़ी वाली ड्रेस तो नहीं पहनी, क्रिमिनल आय तो नहीं हुई। चौथी, कहीं मैंने गंदे दाग वाली ड्रेस तो नहीं पहनी, दूसरों के अवगुणों को धारण तो नहीं कर लिया। और चौथी, पांचवी, सबसे खतरनाक, खून से लथपथ, रक्त रंजित, ऐसा पोशाक तो नहीं पहना कि जिसमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति का मर्डर, खून, आत्मघात किया है। बार बार विकर्म करना ही आत्मघात है। तो ये तो रोज करते हैं, पर हम जो सबसे खतरनाक स्थिति है लघु लुहान वाली, हम ही तो कर ही रहे हैं ये।
अपन दिल को
स्वयं का ही खून, आत्महत्या की बात चल रही है, सुसाइड की बात चल रही है, खून कर दिया और दोष फिर भी दूसरों को ही लगा रहे। कल हॉस्पिटल में एक जवान आया था, 25 साल आया, तो गया ही था, पड़ा हुआ मिला, पता नहीं कितने घंटे से पड़ा था, आया तो ब्रॉडेड जिसको हम कहते हैं, तो कई 15-20 मिनट कोशिश की उसको ठीक निकालने की, पर वो नहीं आया, ऑलरेडी गया ही था, कुछ था ही नहीं, न पल्स न बीपी, जब आया तो पूरा गया था उसके जेब, हाँ होटल वाला, आपको सब खबर रहती है। उसके जेब से एक चिट्ठी निकली, हमने सोचा इसने क्या लिया, कुछ लिया होगा पॉइजनिंग, तो एक चिट्ठी निकली उसकी, निकला उसमें लिखा हुआ था शीला की माता जी ने क्या किया, कुछ तो लिखा था, ब्लैकमेल करती थी शीला की माता जी, इसके लिए मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसी एक चिट्ठी मिली, उसके भी टुकड़े हो गए थे, 3-4 गीली हो गई थी चिट्ठी, तो ये सुसाइडल नोट मिला, सुसाइड तो की और उसमें नोट भी है कि मैं जो मर रहा हूँ कारण ये है, इसको छोड़ना मत मेरे जाने के बाद, ये है। तो हम भी अपनी श्रेष्ठ स्थिति का खून, खंजर छाती में, किसकी श्रेष्ठ स्थिति के, और फिर ये है वो, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। तो ये पांचों ही पोशाक लिबास, इसको चेक करना, ये तो नहीं पहनी, ये तो नहीं पहनी, ये अगर पहनी है पांच तो दुख होगा ही, टिप टॉप चेक करो, सारे दिन भर ऐसी रहती है, चेक करो सारे, अमृत वेला पहनो, सारे दिन भर पहनो, समय प्रमाण पहनो, कर्तव्य प्रमाण पहनो, और जैसी ड्रेस पहनी वैसा ही श्रृंगार भी हो, और फिर सारे दिन बाप के साथ रहो, ये अगर काम किया तो दुख नहीं आएगा। ये है वो कवच, ये है दुख भंजक कवच, दुख प्रूफ कवच, कौन सा, समान श्रेष्ठ स्थिति, टाइटल्स की स्थिति में स्थित रहना, ये है ड्रेस, इस ड्रेस को पहनो, ये नहीं पहनते इसके लिए बाबा को फिर हंसी आती है, रूहानी अलौकिक रंगत देखकर बाप दादा एक तो मुस्कुराते हैं और उसको हंसी भी आती है कि मैंने तुमको कौन सी ड्रेस दी और तुम क्या पहने, क्या ऐसी आसक्ति है इस ड्रेस में, सारे दुखों का कारण ही ये ड्रेसेस है, दूसरों के अवगुणों को धारण कर लिया, श्रेष्ठ स्थिति का खून कर दिया, चमड़ी को देख रहे हैं, चमड़ी अच्छी लग रही है, ये अच्छा लगता है देखना, आंखों नैनाभिराम लगता है आंखों, परंतु है क्या, वास्तविक स्वरूप क्या है उसका, जरा देखेंगे अच्छे से तो पता चलेगा क्या है इसमें। बार बार संसार के दुखों का चिंतन अगर किए ना हम, तो भी हमारी सुखमय स्थिति रहेगी। एक दूसरा एक और मार्ग है कि संसार में जन्म और मृत्यु के बीच में क्या क्या है, सब दुख ही दुख है, उन दोनों में भी दुख है, पर इसके बीच में जो कुछ चलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन दोषों इसके दोष क्या है उसका चिंतन करते रहना। बीमारी और व्याधि, बीमारी और बुढ़ापा, इसमें भी बड़ा दुख है। बुढ़ापा एक बीमारी ही है, एक रीति से बुढ़ापे की बीमारी नहीं, बुढ़ापे में होने वाली बीमारी नहीं, बुढ़ापा ही बीमारी है। एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट। परंतु फिर भी बीमारियों से उसमें जो कुछ होता है, व्यक्ति निर्बल हो जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, उसमें दूसरों पर अवलंबित होता है यहाँ से वहां चलने के लिए, चाहे कोई भी आत्मा हो संसार की, कोई भी कैसी भी कितनी भी श्रेष्ठ स्थिति वाली, उसको उससे तो गुजर नहीं है। वो अलग बात है कि हम उससे प्रभावित हो रहे हैं नहीं, आंतरिक स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, परंतु बीमारी तो है, सबको है, कोई नहीं छूटा है उससे। तो दुख कोई दे तो हम उसको सुख में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, बार बार अपने स्वरूप का चिंतन, बार बार। ईश्वरीय बच्चे ये काम नहीं कर सकते, कल की मुरली में एक वाक्य था, किसी को दुख देना ईश्वरीय बच्चे ये। अच्छा, दूसरा और एक कारण है, अगर हम किसी को दुख दे तो भी हमको दुख मिलेगा, और वो हमें पता ही नहीं कि हम दुख दे रहे हैं, हमको लग रहा है हम बहुत सुख दे रहे हैं सबको, परंतु हम दुख दे रहे हैं। तो ये भी तो थोड़ा पहचान में आ जाए कि कहीं ना कहीं हम ढूंढ ले अपने आप को कि मैं कहां किस किस को दुख दे रहा हूं, क्योंकि जो हो रहा है हमारे साथ हम स्वयं उसके निर्माता है। फिर दूसरा और एक कारण है कि दुख जो है वो हमारे कमजोर मन की निशानी है। दुख अगर प्राप्त हो रहा है इसका मतलब हम अभी तक शक्तिशाली नहीं बने, अभी तक हमने ज्ञान का वह चिंतन नहीं किया है कि जिससे हमारी आत्मा बलवान बन जाए। अभी तक तुरंत दुख होता है, तुरंत फीलिंग आती है, फीलिंग के लिए छुट्टी थी बचपन में, अभी नहीं, संडे की मुरली संकल्पों के लिए थी, अभी वानप्रस्थी हो, अभी तुम बड़े हो, ये बेबी क्वालिटी नहीं चाहिए बाबा को, बेबी बनना है, अभी तो बीबी बनने का समय है, मियां बीबी का सौदा है ये।
कुछ विशेषता जो स्वयं के लिए अच्छी है, भी अच्छी है, लेकिन वो दूसरे को
दुख देती है। अगर देखो इसमें भी ऐसा है कि कोई प्रगति कर रहा है उससे भी ईर्ष्या होती है लोगों को, परंतु बाबा ने इसके लिए भी कहा है कि हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, हम श्रीमत पर चल रहे, परंतु दूसरा यदि दुखी हो रहा है, दूसरा यदि असंतुष्ट है, तो वो हो सकता है वो अपने ही संस्कारों के कारण असंतुष्ट है, एक। दूसरा, अगर हम सबको खुश कर रहे हैं और सबको संतुष्ट कर रहे हैं और फिर भी कुछ कुछ आत्माएं असंतुष्ट रहती है, तो उनके व्यर्थ संकल्प तुम्हें दुखी ना करे, अव्यक्त महावाक्य एक जगह बाबा के, वो नहीं तो हम क्या, हम ये सोचते हैं कि हमसे कोई दुखी ना हो, पर ये हमारे संपूर्ण हाथ में नहीं है। हाँ, तो ऐसी कुछ आत्माएं होगी कि जो कहेंगे नहीं, तुम्हारे वजह से मैं दुखी हूँ। हाँ, वो जोर जोर से वो भले कान में लगाया है, अभी वो सोच रहा है कि मैं तो बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख में, पर तुम्हारे वजह से 10 लोग दुखी है, अब उसका क्या? एक तो ये कान वाला, ये भी है, दूसरा किसी का, एक बहन थी जिसने अपना रिंगटोन लगा के रखा था, मीठे बाबा आ जाओ मदद करो, वो जो था ना, और वो पूरा योग में मतलब ऑन करके रखती थी, और जब भी फोन बजता था तो उसको बड़ी खुशी होती थी, वो कहती थी कि सबका बाबा से, जैसे बाबा की आवाज, योग में जो बैठे हैं सबको बाबा की आवाज सुनने को मिली और सब की बुद्धि बाबा की तरफ चली गई। अरे बाबा, सब आवाज से परे थे, तुमने नीचे लाया है। उसको खुशी थी कि मैंने ये जो रखा है बहुत अच्छी बात है, मेरा अच्छी सेवा कर रही हो, कि योग के बीच में जब बचता है तो और ही ज्यादा खुशी होती थी उसे। ज्ञान की कमी, जो कुछ भी हो रहा है सब जगह ज्ञान की कमी है, ज्ञान को बढ़ाना बस यही एक मार्ग है। अपने आप को समझना कि मैंने कुछ समझा नहीं है, अभी समझना है, आज समझूंगा क्या होता है ये दुख और सुख, आज आज से चालू करता हूँ, अभी सब कुछ नया, भूल जाओ कितने साल से है कहाँ है, विस्मृति है तो बार बार याद दिलाना पड़ेगा ना। क्यों विस्मृति है, कोई आपको नाम पूछता है तो भूलते हो क्या नाम है? नहीं भूलते, पर ज्ञान का कोई पॉइंट पूछते है तो भूल जाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में गया ही नहीं है अभी तक, उधर पहुंचाया नहीं है उसको, ऊपर ऊपर से कॉन्शियस में थोड़ा सा घूम रहा है वो, और परिस्थिति आता है तो खत्म ही हो जाता है पूरा, कुछ नहीं रहता है फिर, वो परिस्थिति चली जाए उसके बाद में दुखी हो जाओ, दुखों के दिन और मास बीत गए, उसके बाद में ज्ञान की स्मृति आती है, फिर सोचते हैं हाँ, और फिर भाषण भी दे सकते हैं कि कभी दुखी नहीं होना चाहिए जीवन में, खुशियों में नाचते रहो। तो दुख से मुक्त होने की, हाँ विजन, विपरीत विजन करना, विपरीत, जो दुखी कैसे हुए सोच सोच कर, सोच सोच के कल्पना करके, अभी उसके विपरीत अपोजिट में सब कुछ करना।
हमने एक प्रयोग किया था कि हमको ना माँ से तो सबको प्यार होता है, तो नए नए ज्ञान में आए, हमको अंदर से ऐसा था कि हम रोएंगे ना तो लोग हमको क्या कहेंगे, हमने कैलाश दीदी से पूछा कि अभी हमारा तो 21 साल हुआ, लेकिन हम समझते थे ना कि पहले की बहुत हम पावरफुल हो गए, शुरुआत में ऐसा हम रोएंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, इसलिए हमने वो ले ली बता, तो उन्होंने बताया कि तुम ना रोज से ही माँ मर गई है, लोग तुम विजन करो रोज,
पावरफुल विजन है,
विजन किया तो मैं सारे दिन रोज गए, दूसरे दिन इधर से इधर किया, 6 मास तक विजन किया, फिर मैं घर में एक बार गई तो मेरी माँ को मैंने बोला था, मेरी माँ ने बहुत मेरे से लड़ाई की,
नहीं सोचो पर उनको बताओ मत।
और वो रीजन में थोड़ा थोड़ा करती रही, लेकिन जब भी माने शरीर छोड़ा और मैं यहाँ यहाँ थी उस समय, बहुत टाइम हो गया था, 5-7 साल हो गया था, तो फिर मैं यहाँ आ गई तो मेरी माने शरीर छोड़ा तो मेरे को मैसेज मिला 3-4 दिन के बाद, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो तो हो गया होगा, मैं दादी के पास थी तो दादी को मैंने बोला कि मेरी माँ ने शरीर छोड़ा, तो मेरे मुख पर इतना ये नहीं था, तो मुझे बोला तेरी माँ ने सर छोड़ा, तेरे मुख पर तो कुछ नहीं है, तो मैंने बोला दादी वो तो हो गया होगा ना, अभी मुझे जाने की जरूरत है, तुमको जाना चाहिए बाहर, अभी वहाँ जाना चाहिए, तो फिर मैंने बोला कि देखो ये विजन करते हैं ना, तो इसलिए जो भी हमको दुख देते हैं, एक बार हमें दुख दिया उसका विजन करो कि अभी फिर से ऐसी स्थिति आए तो मेरे को कैसे रहना, तो उससे है ना थोड़ा थोड़ा तो
बरबर विपरीत विजन कर रहे हैं ना, वो मैंने एक बार बताया था ना 2 मिनट, वो एक आदमी था जब बहुत दारू पी लेता था तो कहता था कि मुझे सब जगह सांप ही सांप दिखते हैं, जहाँ देखो वहाँ सांप ही सांप दिखते हैं, तो लोग कहते थे वो सांप कोई असली सांप थोड़ी नहीं, पर उसके लिए तो असली है वो सांप ही सांप, तो इसके लिए वो क्या कहता था, एक पिंजरा रखता था अपने पास, उसमें एक नेवला पिंजरे के अंदर, और वो लेके घूमता था, लोग बोलते ये क्यों रखते हो तुम, बोलते मैं क्या करूँ इतने सांप जब दिखते हैं तो ये नेवला मेरी रक्षा करता है, बोलते वो सांप तो झूठे है, उसने कहा ये नेवला भी तो झूठा है। ये नेवला सच्चा है ही नहीं, वो एक इमेजिनेशन को काउंटर एक्ट करने के लिए नया एक इमेजिनेशन क्रिएट किया गया, आपको डर है अंधेरे का डर है, उसका एक अपोजिट विजन क्रिएट करो, किसी में बहुत मोह है जैसे ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं, तो उससे विपरीत करना है, अपोजिट सब कुछ, एक वेव क्रोध की आ रही है, दूसरी वेव उत्पन्न करो प्रेम की, उसी समय प्रेम की वेव, जैसे एक चीन में कोई एक जाति है वहां पर कोई कभी क्रोध करता ही नहीं, उसमें ऐसा नियम है कि अगर आपको क्रोध आया तो अक्रोध वाली कोई बात कर दो उस व्यक्ति के लिए, जैसे आपको बहुत क्रोध आ रहा है तो उस व्यक्ति को एक फूल दे दो, अभी उसको बस मारना ही बच्चा था, बस उसके पहले बस ये काम कर दो, उसके विरोध में कुछ कर दो, तो मास्टर सुखदाता, सुख के भंडार, सुख के सागर की संतान, हम सुख स्वरूप आत्मा है, लक्ष्य है सबको सुख देना और दुख ना लेना, अच्छा, दुखी को सुखी बनाना।
आज हमें भीतर वालों से थोड़ा कम दुख लगता है, पास में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने समाचार पत्र पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, कल अजगर ने 400 लोग खा लिया, क्या पढ़ा, 50 लोग बाढ़ में डूब कर मर गए,
हमें उन्हें सकाश देनी है साक्षी होकर,
हाँ
दूर से, और हम ज्यादा मदद उन्हीं आत्म, जितना हम व्यक्तियों से दूर रहेंगे उतना ही हम उनकी ज्यादा उससे मदद कर सकते हैं, जिससे बिना बेहद के वैराग्य के सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती है। हम किसी से बहुत ही आ सकते हैं, बहुत आ सकते हैं, उसको हम सकाश ही नहीं दे सकते। जिसको सकाश देना है, जिनको दुखों से मुक्त करना है, उनसे अलग हो जाना पड़ेगा, चाहे वो सामने वाला नजदीक मित्र संबंधी या दूर का कोई व्यक्ति है।